చంద్రకీ మారు మొగటవంశీవాడికి. కాబట్టి జో జాకే నిర్భర తాకో తాకీ రాజ్ ఉల్టే జల్ మచ్లీ తెరే బయో జాత్ గజరాజ్. జో జాకే ఆశ్రిత రహే తాకో తాకీ రాజ్. జో జాకే ఆశ్రిత రహే తాకో తాకీ రాజ్ ఉల్టే జల్ మచ్లీ తిరే ఉర్ బయో జాత్ గజరాజ్. భావ యే హే కి మచ్లీ జో హే నదీ కే ఆశ్రిత జల్ కే మా రహే వోయి బంగు ఘర్ వోయి బంగు పాస్ వా మే పరి నిర్భర్ కరే. తో వా నదీ జో హే ఏక్ ప్రకార్ సే తీ मछली ने मदद करे कि वह मछली नहीं बहे, वो एक प्रकार से वहीं बसती रहेगी. रात दिन जल की धारा बह रही है और जल जो है एक प्रकार से धार के मां जोर से चल रहे, किंतु मच्छी तो जिसके स्थान की वहीं है सो रहेगी. कितना ही जल चलो जो जल एक प्रकार से उल्टो चल रहे है, माने वो दूसरे तरफ उसको प्रवाह जा रहे है, किंतु मच्छी उस प्रवाह के साथ होकर के नहीं जाती. और बड़ा बड़ा हाथी है जिसका तिरनाला जिसका भी बह जावे, पर मच्छी तो तिरती ही रहे क्योंकि मच्छी ने मैं को आश्रय है. तो इसी प्रकार से थी जो भगवान को आश्रय ले ले हुए तो सब प्रकार से भगवान बन की सुरक्षा करे. नदी तो जड़ है, भगवान चेतन है, तो बह की अपेक्षा और विशेष रूप से भगवान बन की सुरक्षा करे. भविष्य जाकर के श्री रामचंद्र जी को शरणों ले लियो, तो शरणों ले लियो तो एक प्रकार से थी मैंने आश्रय दे लियो. भगवान भगवान लीला कर रहे हैं, सुग्रीव आदि बांदरों से पूछ रहे हैं कि रावण का भाई भविष्ण जो है अपने शरण आया है, तो इस विषय में तुम लोगों का क्या विचार है, तुम्हारी क्या इसमें सम्मति है, तुम बतलाओ. भगवान तो सबकी परीक्षा लेते ही रहते, उस समय के बीच के मां सुग्रीव ने यह बात कही कि मेरी राय तो यह है कि ये शत्रु का भाई है, इसको बांध करके रखना चाहिए, क्योंकि राक्षस लोग अपने बलवान होते हैं, मोको दे करके मार डाले तो नेबाल में किस समय अपनों को धोखा दे देवे. इनकी जो माया है वो बड़ी विचित्र होती है, इसलिए हमारी राय तो यही है कि इसको पकड़ करके बांध करके रखना चाहिए. भगवान क्या कहते हैं सुग्रीव से कि सुग्रीव तुमने जो राय दी वो बड़ी अच्छी राय दी, बड़ी नीति की विचित्र राय दी. मित्रों को जिस प्रकार से राय देनी चाहिए वैसी तुमने राय दी, उसको समर्थन करो, बड़ी प्रशंसा. उसके बाद में यह बात कही क्या कोई मेरे सन्मुख क्या किसी की माया दिख सकती है. तुमने कहा कि राक्षस बड़े बलवान होते हैं, मेरा भाई जो लक्ष्मण है वो समझो कि क्षण के मां सब राक्षसों को मार सकता है, तो माया तो मेरे सन्मुख नहीं चलती, राक्षसों का बल लक्ष्मण के आगे नहीं चल सकती. और इससे भी बढ़कर एक बात है कि चाहे वो कितना ही अपराधी क्यों नहीं हो, जब वो हमारी शरण आ जाता है तो उसका मैं त्याग नहीं करता, ये हमारे एक व्रत है. वाल्मीकि में ये दिखलाया कि भगवान कहते हैं कि जो वचन मात्र से भी कह देता है कि मैं आपका हूं, तो मैं उसको अभेदान दे देता हूँ। तो भाव ये दिख रहा है कि मेरे जैसे आदमी को क्या करना चाहिए। तो हनुमान जी तो सैन में समझते थे, संकेत से समझते थे, बोले ठीक है। भविष्ण को ले आए, ले आया तो बोला कि आओ लंकेश, समुद्र का जल मंगा करके वहीं राज तिलक कर दिया लंका का। तो भगवान तो भविष्य की बात जानते थे कि लंका तो तुम्हारे को मिलनी है, अरे भविष्ण को देनी है तो पहले ही दे दो, तो पहले ही लंका भविष्ण को दे। रावण ने जो लात मारी, तिरस्कार किया भविष्ण का कि तुम जाते रवता पश्चिम के पास, एक प्रकार से उनको तू उपदेश दे। तो भविष्ण भगवान की शरण आ गया, पर भगवान ने उसको स्वीकार कर। जिस वक्त में लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगा, उस वक्त के भगवान विलाप करते हैं और विलाप करते हुए कहते हैं कि सीता रावण के द्वारा हरी गई, उसका कोई फिक्र नहीं, और भी जो कुछ हुआ उसका कोई फिक्र नहीं, फिक्र इस बात का है कि मेरी शरण जो भविष्ण आ गया था, अरे उसको मैंने आश्वासन दे दिया था, वो जो हमारा मिथ्या हो जावे तो हमारे लिए कितना करे। तो भाव यह है कि आश्रित जो जन है वह के लिए कैसा एक प्रकार से भगवान का भाव है आश्रित जन के प्रति। तो भगवान का जो आश्रय मिल जावे और भगवान तो स्वीकार करने के लिए तैयार ही है, फिर हमको अपने लिए कोई भी चिंता नहीं करनी थी। वे तो साक्षात भगवान थे। जो अच्छे पुरुष होते हैं, महात्मा जो पुरुष होते हैं, उनका भी हम आश्रय कर ले हुए और विश्वास कर ले हुए तो हमारे कल्याण में कोई शंका की बात नहीं। शास्त्रों से भी यह बात सिद्ध है, युक्ति से भी यह बात सिद्ध है। महात्माओं की बात तो दूर रही, जो संसार के बीच के मां आपकी इज्जत रखने वाले हैं, प्रतिष्ठित आदमी है, महात्मा नहीं है, किंतु एक प्रकार से संसार के बीच के मां किछु श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वे लोग भी एक प्रकार से अपने आशीष जन का त्याग नहीं करते, और जो करते हैं उनकी दुर्दशा होती है। थोड़े समय के पहले की बात है, आगरे की जेल के बीच में डूंग जी और जुहार जी दो डाकू थे, और वे आगरे की जेल के बाहर रहने वाले जो जेली है उनकी सबकी हथकड़ी बेड़ी काट करके और सबको निकाल दिया और फिर आप निकल गए। अब उस वक्त में अंग्रेजों का राज था, तो उनके ऊपर अंग्रेजों ने बड़ी कड़ाई की कि वे जो डूंग जी जोहार जी दो जो डाकू के भी डाकू, उनको एक प्रकार से सख्त सजा देनी चाहिए। जो कैदियों को भी निकाल दिया और खुद भी निकल गए, उनका ये भाव था कि हम जब इस कैद से निकले और हमारे साथ ही यहाँ रहे तो हमारा निकलना लज्जा की बात है, पहला इनको निकालें फिर हम निकले। तो सब कैदियों को निकाल करके वे निकले। एक तो गया समझो कि जोधपुर के महाराज के पास, और एक गया बीकानेर के महाराज के पास। बीकानेर का महाराज उस वक्त सरदार सिंह जी थे, बड़े एक प्रकार से प्रतिज्ञा में दृढ़ और बहुत ही अच्छे सज्जन पुरुष थे। कोई महात्मा तो नहीं पर सज्जन अच्छे पुरुष थे। उनके पास जाकर के कहा डाकू ने कि देखो हम गवर्नमेंट के चोर हैं, अरे गवर्नमेंट हमारे पीछू में है, और जो हमको आश्रय देगा उसको भी गवर्नमेंट तंग करेगी। तो आपकी सामर्थ हमको रखने की है, तब तो रखिए, हम आपकी शरण आए हैं। अगर आपकी सामर्थ नहीं है तो अभी हमारे को जवाब दे दीजिए, हम दूसरा किसी का आसरा देंगे। तो बोला नहीं, हम तुमको आसरा देते हैं, तुम हमारे यहाँ। दूसरा गया तो डूंग जी तो थे चाचा काका, और जुहार जी थे उसका बेटा। तो जोधपुर के महाराज को गया, उसने भी वही बात कही कि देखो हम गवर्नमेंट के चोर और डाकू हैं, गवर्नमेंट हमारे पीछे है, हमारे को जो आसरा देगा उसको गवर्नमेंट तंग करेगी, हम आपकी शरण आए हैं। जब शरणागत की रक्षा करने की आपकी सामर्थ्य हो तो हमको रखिए, नहीं तो हमको छोड़ दीजिए, हम दूसरा उपाय सोच सकते। बोले नहीं, तुम रोक कोई चिंता नहीं। उस वक्त के बीच के मास 22 रजवाड़े जो खास हैं जोधपुर जयपुर बीकानेर आदि, उनके ऊपर आबू जी का एजेंट, वो सबका शासक था। तो आबू जी का एजेंट किसी अपने अधिकारी को या खुद बीकानेर के महाराज के पास में भेजा कि इस तरह से हमारा चोर है वो आपके पास है, और उसको छोड़ना ही होगा। हाँ बोले है, तो बोले उसको छोड़ दो, ऊपर का हुक्म है, सख्त आज्ञा है, उसको छोड़ना ही होगा। बोलो कि जाकर के आबू जी के एजेंट को कह दो कि वो सिद्धार्थ सिंह राजा के पेट में है, हमारे पेट के अंदर है, उसको चीर कर निकाल लो। मतलब है कि जब तक हम जीत करेंगे नहीं छोड़ेंगे, तुमको जो कुछ करना हो तो कर लो, हमको मार डालो उसको ले। हमने उसको आसरा दे दिया, जब तक हम जीते रहेंगे नहीं देंगे। छोटा सा बीकानेर का राज, ये हिंदुस्तान का सारे का समझो कि दिल्ली का बादशाह, दिल्ली का राजा था गवर्नमेंट, और उसके नीचे आबू जी का जन, उसके नीचे बीकानेर का राज। वो आकर के एजेंट से कहा कि ये बात कहते हैं। एजेंट ने अपने ऊपर से पूछा कि क्या करना चाहिए, बोला कि चुप रहो, अब कोई युद्ध छेड़ दोगे तो सब राजा एक हो जाएंगे, धमकाने से काम चले तो चला दो, तो चुप मार जाओ, बात मत करो, चुप कर लिए। जोधपुर के महाराज को जाकर के कहा कि तुम एक प्रकार से इसको छोड़ दो, ऊपर का सख्त हुक्म है कि छोड़ना ही होगा, हमारा चोर है, तुम उसको आश्रय दिया है। हाँ बोलो है, तो बोलो तो उसको छोड़ दो, नहीं तो एक प्रकार से सख्त हुक्म है कि आपने छोड़ना ही पड़ेगा। तो बोला मैंने उसको आश्रय दिया था, ये दिया था, अब जोर पड़ा उसका तो बस उसको छोड़ दी, छोड़ दिया। तो जाने के समय उसको श्राप दे गया, तू हमारे को आसरा दे करके त्याग कर देता है, इस वास्ते तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ेंगे और तुम मरो। तो फिर उस सारे शरीर के बीच में ये कीड़े पड़ गए, और वो तर तर करके मरे, उसका वो श्राप लग गया। ये भी डाकू था किंतु बात न्याय की थी, वो आश्रय नहीं देता तो कोई बात नहीं। तो अभी तक वो बात चली आ कि बीकानेर का जो महाराज है उसने आश्रय नहीं दिया, उसने आश्रय दे दिया। और भी सुना जाता है, तो इतनी बात हमारे पूरी ख्याल में नहीं रही कि बीकानेर का महाराज था कि जयपुर का महाराज था। ये वो तो बीकानेर का महाराज था, सिद्धार्थ सिंह जी थे, ये तुम्हारा ख्याल है। तो कोई भी हो, उस राजा ने उसको छोड़ दिया, और उसके ऊपर बीच में ठाकुर जी को बीच में दिया कि मठ, ठाकुर जी को बीच में देकर के शपथ खा करके कहता हूं कि कितनी भी भारी आपत्ति आएगी तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो ठाकुर जी का दर्शन करने के वास्ते गया, तो ये बताया जाता है कि ठाकुर जी की जो मूर्ति है उसने मुंह फेर लिया, वो धातु की मूर्ति का मुंह अभी फेरा हुआ है। ये तो सब कोई है, तो जयपुर
की बात,
तो जयपुर राज की बात,
जयपुर
मैं बोली जयपुर और जोधपुर की तो मेरे ख्याल नहीं रही,
जयपुर राज में कमजोरी रही है बस।
हाँ, तो जयपुर की सब्जी थी, तो उन्होंने अपने आश्रयजन को त्याग कर दिया, तो समझो कि सिद्धार्थ सिंह जी ने नहीं किया। और सिद्धार्थ सिंह जी एक बीकानेर के राजा ही तो थे ना, तो अपने ऊपर वाले की धमक पड़ने पर भी उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि मैंने इसको आश्रय दिया है और मैं जब तक जीता रहूंगा नहीं छोड़ूंगा इसको, उनको बात डालने। तो हम लोगों के लिए तो समझो कि स्वयं भगवान आश्रय देने के लिए तैयार, और भगवान की शरण होकर के उस पर हमको निर्भर हो जाना चाहिए, फिर हमारे कल्याण में कोई शंका की बात नहीं है। हम तो ये कहते हैं कोई आदमी सत का आश्रय ले ले तो उसका कल्याण हो सके, क्यों सत साक्षात भगवान का स्वरूप है। किंतु आजकल तो ये बात है कि हम मिथ्या का आश्रय लेकर के और अपनी रक्षा चाहते हैं, झूठ का आश्रय लेकर। हम किसी को कहते हैं कि भी व्यापार में झूठ कम मत करो, इनकम की चोरी मत करो, सेल टिकट की चोरी मत करो, और अपने झूठ का आश्रय मत लो, गवर्नमेंट की कानून को भंग मत करो, और कहीं गवर्नमेंट की कानून भंग हो जावे तो मत डरो, गवर्नमेंट के पूछने पर साफ कह दो कि ये कानून का भंग हमने किया, इसके वास्ते जो आपकी इच्छा उसको दंड दे सकते। ये कठिनाई आपसे बर्दाश्त नहीं हो तो कानून भंग मत करो, और यदि आप में सूरवीर है तो कानून को भंग कर सकते हो, किंतु एक प्रकार से डरो मत, काम पड़ने पर साफ कह दो कि हाँ हमने आपकी कानून का भंग किया, जो कि आपकी इच्छा उसको दंड। तो ये जो वीरता है ये उस भगवत आश्रित पुरुष के मन स्वाभाविक आ जाती है, तो वो कभी डरता ही नहीं, किसी का भय करता ही नहीं, चाहे उसको कोई मार डाले, जैसे प्रहलाद उस प्रकार की स्थिति उसकी हो जाए। तो हमको भगवान का आश्रय लेकर के उस पर निर्भर होकर के संसार के मन जीना चाहिए, नहीं तो उसे जीने से मरना ही इच्छा, मरना इच्छा का मतलब ये कि आत्महत्या करके मर जाओ, ये कहना नहीं है, माने मरने की माफक आफत आ जाए तो उसको स्वीकार कर, किंतु अपने धर्म का त्याग मत, भगवान की शरण का त्याग मत करो, धर्म का त्याग मत करो। धर्म कहता है कि मुझको ही लोग त्याग देते हैं, मैं किसी का त्याग नहीं करता, और जो धर्म का त्याग नहीं करता, धर्म उसका कभी त्याग नहीं करता। और ईश्वर के भी यही है, ईश्वर कहते हैं कि मुझको लोग छोड़ देते हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ता, और जो ईश्वर को नहीं छोड़ता भगवान उसको कभी छोड़ते ही नहीं, भगवान उसका कभी त्याग नहीं करते। मैं तो कह रहा है क्या है, महात्मा जो पुरुष होते हैं वे काम से, लोभ से, भय से कभी धर्म का त्याग नहीं करते, वे समझते हैं कि धर्म ऐसा नित्य है और ये जीवन मनुष्य का ऐसा अनित्य है, अनित्य जीवन के लिए नित्य वस्तु का त्याग कैसे करें। मनुष्य कहते हैं, नीति कहती है कि यो ध्रुवाणी प्रीत्यज्य अध्रुवं परिसेवते, और ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्ट एव हि, जो ध्रुव जो सत्य वस्तु है उसका मिथ्या वस्तु के लिए सत्य का त्याग कर देता है, संसारिक पदार्थ मिथ्या है इसका जो त्याग कर, इसके लिए जो सत्य का त्याग कर देता है, ध्रुव वस्तु का नित्य वस्तु का परमात्मा का त्याग कर देता है, उसके लिए परमात्मा अदृश्य हो जाते हैं, यानी उसके लिए छिप जाते हैं। नाश का दौर थे अभाव होना और सुंदर की लोप होना, तो भगवान उसके वास्ते अपने लोप हो जाते हैं, छिप जाते हैं। और मिथ्या जो वस्तु वो तो नाशवान है ही, तो इस वास्ते मिथ्या वस्तु के लिए सत्य का त्याग नहीं करना। तो संसार के लिए परमात्मा का त्याग नहीं करना, परमात्मा किसी को नहीं छोड़ती। अपराधी के अपराध को माफ कर देते हैं एक प्रकार से, जो उसकी शरण हो जाता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, चाहे कैसा ही अपराधी क्यों नहीं हो। ईश्वर और धर्म और महात्मा, इनके जो शरण चलाया जाता है आशीष हो जाता है। इनके तीनों के नियम है कि उस आशीष को त्यागते नहीं, वो खुद ही उसका त्याग कर देता, तो उसका कोई उपाय नहीं। और इन तीनों के मस्तक से बढ़कर के भगवान है, सो मालिक है। महात्मा के भी भगवान मालिक है और धर्म के भी भगवान मालिक। आचार प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रवृत्ति, आचार आचरणों से धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म के प्रभु अच्युत भगवान है, तो भगवान सबके प्रभु। इसलिए भगवान का आश्रय लेकर के संसार के मां विचरण करना चाहिए, संसार के मां जीवन यापन करना चाहिए, भगवान की शरण होकर के, और उसके आश्रय को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपत्ति पड़ने पर प्राणों का त्याग कर देना चाहिए, किंतु भगवान का त्याग नहीं करना चाहिए। आपत्ति पड़ने पर भगवान का त्याग नहीं करना, प्राणों का त्याग करना, इसका मतलब क्या कि ऐसी आपत्ति आवे कि या तो तुम भजन ध्यान और गीता परिश्रम की भक्ति इसका त्याग कर दो, अन्य तो तुम्हारे को समझो कि फांसी का हुक्म है, तो फांसी चढ़ जाने में कोई आपत्ति नहीं। हम तो ज्ञान करके मरना नहीं चाहते, जीना भी चाहते हैं और भगवान को भी चाहते हैं, किंतु दूसरा आदमी ये कहता है या तो तुम धर्म को छोड़ दो या ईश्वर को छोड़ दो, और नहीं तो तुम फांसी स्वीकार करो, तो उस जगह के बीच के मां धर्म का या ईश्वर का त्याग नहीं करना चाहिए बल्कि फांसी का स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे भक्त प्रहलाद ने वो बात बार बार अपने सामने रखी कि चाहे फांसी चढ़ा दो किंतु मैं मेरे कर्तव्य का त्याग नहीं छोड़ूंगा, कर्तव्य का नहीं त्यागूंगा, यानी ईश्वर को नहीं छोड़ूंगा, ईश्वर की भक्ति करूंगा। तो वे डटे रहे, तो ईश्वर ने उसकी सब प्रकार से रक्षा करी। इसी प्रकार से थी हमको प्रहलाद के माफक भगवान के ऊपर निर्भर हो जाना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। इसलिए हम लोगों को भगवान की शरण होकर के और भगवान के ऊपर निर्भर हो जाना चाहिए। भगवान की शरण के कहीं तीन प्रकार आते हैं, कहीं चार प्रकार आते हैं, और वो सभी एक प्रकार से थी, एक ही बात है। जैसे अंतःकरण के मन बुद्धि अहंकार ये तीन भेद मानते हैं, कोई मन बुद्धि अहंकार चित्त ये चार भेद मानते हैं, तो मन और चित्त को का दो स्वरूप मान लेने से चार हो जाते हैं, और मन है वही चित्त है, चित्त वही मन है। संक्षेप से उसका भेद भी माना जा सकता है, चिंतन करे वो चित्त है, संकल्प करे वो मन है, तो मन ही का दोनों काम है। तो इसी प्रकार से थी अपने प्रमाण के विषय में कोई तीन प्रमाण मानते हैं, कोई चार प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष आगमानुमान यानी प्रमाणानी, ये इस प्रकार से मानते हैं। योग शास्त्र के बीच में महर्षि पतंजलि ने तीन प्रमाण माने, प्रत्यक्ष प्रमाण कि जैसे ये घड़ी है, प्रत्यक्ष है, देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। और अनुमान प्रमाण ये कि लोग मर रहे हैं तो हमको भी एक दिन मरना पड़ेगा, या पहाड़ के बीच के वहां धुआं उठ रहा है तो वहां अग्नि जरूर है। इस प्रकार से जो युक्ति प्रमाण है वो है सो अनुमान प्रमाण, और एक शब्द प्रमाण कि ये बात जो है जो गीता में लिखी है ये महापुरुषों का वचन है, तो वो है शब्द प्रमाण। आपद पुरुष का जो वचन प्रमाण है वो शब्द प्रमाण, आपद पुरुष माने महात्मा पुरुष, उनका जो वचन है वो प्रमाणित है, ये शब्द प्रमाण। और शास्त्र सब, शास्त्र सब के सब आपद पुरुषों के वचन है, महापुरुषों के वचन है, इस वास्ते शास्त्र प्रमाण है सो शब्द प्रमाण। समझो कि न्याय जो शास्त्र है, वैशिष्ट जो शास्त्र है, उन्होंने चार प्रमाण माना, तीन तो ये और चौथा उपमान, उपमा जिसको हम कहते हैं कि वो चंद्रमा की मापक है, वो मुख की मापक है, ये उपमा को एक प्रमाण माने। तो यहाँ उपमा जो प्रमाण है उसे अनुमान प्रमाण के अंतर्गत है, इसलिए महर्षि पतंजलि ने इसको अलग नहीं माने। तो मैं शरणागत की बात कहता था और विषयांतर में चला गया। तो भगवान ने गीता में उसके चार भेद किए, मांगी पार विपाश्रित है ये पी सुप योनि अस्त्रियो वैश्वा सता शुद्रास्ते भी अंति परांगति। हे पार्थ, मेरी शरण होकर के ये अस्त्रियो चे वैश हो और चे शूद्र हो और चे पापियोनि भी क्यों नहीं हो, वे भी एक प्रकार से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं मेरी शरण होकर के। तो शरण का क्या स्वरूप है कि मन मना वो मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु और मामे वैश्वतुम थे प्रति जाने प्रियस ने, ये जो पंच के माँ कह अठारवी अध्याय के वही चौतीस के माँ है कि मन मना वो मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु और मामे वैश्य युक्त हूँ महात्मा नंग मत परायण है। तू अर्जुन मेरे में मन को लगा, मेरा भक्त हो जा, मेरी पूजा कर और मेरे को नमस्कार कर, इस प्रकार मेरी शरण हुआ तू मेरे को प्राप्त होगा, इस प्रकार मेरे में मन लगाकर मेरी शरण हुआ तू मेरे को प्राप्त होगा, तो इस प्रकार मेरी शरण हुआ। तो शरण का ये चार प्रकार हो गया, इसका नाम शरण है।